پرانی زمان کچھ 100-150 سال پہلے فلانی کے نام سے ایک وہاں پر تھی خلافت, وہ الگ سے تھی, پھر نارتھ آف افریقہ میں الگ سے خلافت بنی ہوئی تھی اور بغداد کی خلافت الگ چل رہی تھی, پھر ترکوں کی خلافت, تو یہ سارے ریجنز میں. پھر اگر ہم فردر فار ایسٹ میں چلے جاتے ہیں تو فلپینز کے اندر بھی جو ایک خلافت تھی وہ سیپریٹ تھی, یہ خلافتیں تھیں جو کہ ڈیفائن ہوئی ہوئی تھیں, اور انہیں ریجنس کے اندر زیادہ پرابلم بھی ہے. تو اس کو پولیٹیکلی بھی ہینڈل کرنا اتنا ہی ضروری ہے. اگر یہ انلیس کہ او آئی سی جو ہے وہ کوئی اپنی ہی ایسی اینٹی ڈیفائن نہ کر دے جس کے اندر کے یہ پولیٹیکل ان کو سپورٹ کٹ آف ہو جائے, تو یہ جتنا اسٹرگل کریں گے ان کے, آپ جتنا ہارشلی اس کے اوپر ان کو اٹیک کریں گے, میرے خیال میں جو فورسز ہیں ان کی اپوز کرنے والی, یہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے انلیس کہ ان کی پولیٹیکل سپورٹ کو وڈرا کیا جائے کسی طریقے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خلافت جو کہ بین کر دی گئی تھی 1924 میں, سم ہاؤ اور اس کو بہتر فارم میں ایک ایسا اینٹیٹی بنائی جائے جو کہ مسلم کنٹریز کے اندر ہی پین اسلامک کنٹریز کے اندر ایک کنٹرول کا سسٹم ہو جس کے اندر یہ لوگ ایسی جو اینٹیٹیز ہیں وہ سر نہ اٹھا سکیں.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ خاص طور پہ داعش کی بات کرتے ہیں تو عراق کا بھی ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ عراق میں سب سے زیادہ سرگرم عمل ہیں وہ, اور شام میں بھی انہوں نے کافی علاقے پہ قبضہ کر رکھا ہے. جو بات کہی جا رہی ہے کہ اب ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا ہے عراقی سیکیورٹی فورسز نے, جن کے ساتھ تو شیعہ ملیشیاز بھی شامل ہیں اور امریکن ایڈوائزرز تو باہر ان کو ایڈوائز کر ہی رہے ہیں, اس کی کیا فیکچوئل پوزیشن ہے؟
یہ فیکچوئل پوزیشن یہ کہ وہ ہٹ اینڈ رن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ اس طرح کی ریگولر آرمی تو نہیں ہے, لیکن ایز اے جس طرح گوریلا ٹیکٹکس ہیں یہ کسی کو اسٹیبل رہنے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ کافی ایریاز کے حساب سے دیکھیں تو کافی بڑا ایریا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑی ملٹری چاہیے. اور انفارچونیٹلی جس طرح کے پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ اگر صرف ایران کی آرمی ہی جس طرح کے اور ان کے جو ریولیوشنری گارڈز ہیں وہ اور حزب اللہ جو ہیں وہ یہ لوگ زیادہ فرنٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں, آلدو کہ عراق کی اپنی آرمی بھی جو ہے وہ بھی ہے بیچ میں, لیکن یہ ایک ڈفرنٹ میسج دینا شروع کر دیا ہے اس کی وجہ سے اسلامک کنٹریز کے اندر کہ وہ شیعہ لیڈ یہ ایک کولیشن ہے جو کہ جو سنیوں کا ایریا اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو سپورٹ جو ہے وہ مل نہیں پائے گی, اور بلکہ الٹا اس کا ریورس ریئیکشن یہ ہو رہا ہے کہ جو سنی ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کو کافی زیادہ اسٹرکٹلی اپوز کرنا شروع ہو گئے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ خلافت کے اگینسٹ یہ برسر پیکار ہو گئی ہیں وہ فورسز جو کہ خلافت کے اگینسٹ تھی, جبکہ شاید ایسا نہیں ہے اور بہت ہی کلیئر ہے کہ اس اینٹیٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو کہ آئی ایس آئی ہم کہتے ہیں. اس کے لیے کچھ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب تک کہ بیچ میں کوئی سنی بڑی کوئی ملٹری جو کہ جو سنی فورسز ہوں جو کہ شیعہ ان کو لیبل نہ کیا جا سکے, انلیس کہ وہ انوالو ہوں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے اگین بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ پین اسلامک لیول کے اوپر ایک آرمی ہونی چاہیے, اور اس وہ بنانے کے لیے میرے خیال میں کہ ایران اور سعودی عرب کو اپنے جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے تاکہ وہ جوائنٹ ایک ایفرٹ ہو جس سے کہ ختم کیے جا سکیں, کیونکہ کوئی بھی ہم کہیں کہ آن گراؤنڈ جو فورسز جو اچھے طریقے سے لڑکے جو ان کو پش کر رہی ہیں وہ ایران کے ہی انڈر جو کنٹرول ہے اسی کے اندر وہی ہیں فورسز جو کہ ان کو پیچھے دھکیل رہی ہیں, ادروائز ریسٹ آف دا مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایسی آرمی نہیں ہے جو کہ آئی ایس آئی کو چیلنج کر سکے.
اچھا ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جو بوکو حرام جیسی اور بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, جیسے پاکستان میں القاعدہ ہے, یمن میں بھی القاعدہ کا وجود موجود ہے, اس کے علاوہ طالبان ہیں, الشباب ہے افریقہ میں, تو کیا یہ دوسرے گروپ بھی اپنی الیجنس کا اعلان کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں یا یہ کہ ان کا ساتھ ہے؟
جی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم فلپینز کا ایریا ریجن ابھی ہم چھوڑ دیں تو, لیکن انڈونیشیا سے ان کو الیجنس مل چکی ہے, اگر ہم پاکستان کا دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو مل گئی ٹی ٹی پی اور یہ جو اینٹیز ہیں, اور اگر ہم فردر اپ آتے ہیں ٹورڈز یمن تو یمن سے ان کو سپورٹ مل گئی ہے, صرف ایک جو الشباب ہیں صومالیہ کے اندر ان کی ابھی کیونکہ انٹرنل پاور اسٹرگل چل رہی ہے, جو ان کے ایگزسٹنگ جو کنٹرول کر رہے تھے وہ نہیں ہے, دے آر مور نیئر القاعدہ اور القاعدہ کے ساتھ ان کی ایفیلیشن رہی ہے, تو اس وجہ سے وہ آئی ایس کو ابھی فلی سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن ان کے اندر بھی انٹرنل ریوولٹ ایک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے موسٹ پرابلی ود ان سرٹن پیریڈ آف ٹائم یا تو اسپلٹ ہو کے دو یونٹس بن جائیں گے اور ایک یونٹ جو سپورٹ کر رہا ہوگا ان کو. اور پھر اگر ہم آتے ہیں لیبیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کافی گینز کی وہاں پر آئی ایس کے فلیگ کے اندر, अल्जीरिया के जो हैं हार्ड लाइनर्स, उन्होंने भी ऐसे किया. अब हम जा रहे हैं ये जो नाइजीरिया के अंदर बोको हराम का सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको सपोर्ट ग्राउंड के ऊपर मिलनी शुरू हो गई है. और जितना टाइम इसको और मिलेगा सर्वाइव करने का, इनकी सपोर्ट बढ़ेगी. और अगर इस तरह की जिस तरह की सिनेरियो चल रही है कि क्योंकि और कोई आगे आ नहीं रहा, टर्की ने ऑल्दो के सर्टेन टाइम के ऊपर टर्की की पॉलिसीज की वजह से ये स्ट्रांग हुआ है.
अच्छा.
लेकिन अब टर्की के बीच में इंटरवीन करने के बजाय सिर्फ ईरान को छोड़ दिया कि ईरान कंट्रोल करे उन्हें, तो ये ईरान के लिए भी बड़ी एक मुश्किल की बात बन रही है. ऑल्दो कि उन्होंने काफी तक कंट्रोल किया एक सर्टेन एरिया को, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत खतरे की बात बन सकती है आगे चल के, अनलेस कि कोई सुन्नी कंट्रीज में से कोई आर्मी आके उनके साथ खड़ी ना हो इनको कंट्रोल करने के लिए.
अच्छा, संगीन शाह साहब आपकी लाइन नहीं मिल रही थी. हमारे साथ डॉक्टर तेज महमूद साहब भी हैं जिनसे हम ब्लडी संडे के बारे में आगे चल के गुफ्तगू करेंगे. लेकिन मैं आपसे, मेरा सवाल ये है संगीन शाह साहब के, क्या बोको हराम के ताज़ा तरीन ऐलान के बाद आप ये महसूस करते हैं कि कोई इंटरनेशनल अलायंस बन रहा है इन दहशतगर्द तंजीमों का?
जी, जहाँ तक इंटरनेशनल अलायंस का ताल्लुक है, आईएस तो कोशिश करेगा कि वो अपने लिए एक अलायंस बनाए, क्योंकि अगर आप आईएस के देखें वो एक खिलाफत का दावा कर रहे हैं. इससे पहले खिलाफत का दावा तालिबान ने किया था, मुल्ला मोहम्मद उमर साहब ने अफगानिस्तान में किया था. जहाँ तक मुल्ला मोहम्मद उमर साहब की खिलाफत का दावा था, वो रीजनली फोकस्ड था. और अगर तालिबान के बयान आप देखें तो उन्होंने बहुत कम ऐसे बयान दिए हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल एरिया के साथ हो. करीबी दिनों में उन्होंने एक बयान दिया था जो कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जो कि मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी हो रही थी उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया था. अदरवाइज वो बहुत कम इंटरनेशनल एरिया के ऊपर बयान देते हैं. जहाँ तक इस्लामिक स्टेट का ताल्लुक है, उसने ये तालिबान के बाद मुल्ला मोहम्मद उमर साहब के बाद दूसरे ऐसा ग्रुप है जिसने खिलाफत का ऐलान किया है. और जो खिलाफत के ऐलान करने के बाद उसकी एक इंटरनेशनल रिट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो जाती है. जो भी मुसलमानों में खिलाफत का दावा करेगा वो एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को लेकर आगे चलेगा. ऑल्दो तालिबान का इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव नहीं था, मगर आईएस का इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बहुत शुरू से है. और उन्होंने इस पर्सपेक्टिव को सुनी पैन अरबिज्म के ऊपर भी बेस किया है, जो कि इराक और सीरिया के बीच में उन्होंने पहले दो कनेक्टेड ऑलरेडी दो मुल्कों के बीच में, उसके बाद उन्होंने अपना दायरा इख्तियार और आगे बढ़ाया. दूसरी एक बुनियादी वजह आईएस को अपने आप को इंटरनेशनली एसोसिएट करने की वजह यह है कि अभी करीबी दिनों में आईएस को इराक में सेटबैक्स मिली हैं और उसको एक ऑफेंसिव मोड से डिफेंसिव मोड के ऊपर जाना पड़ गया है. अब आईएस ये भी कोशिश करेगा कि जितनी उसको इंटरनेशनल एलिजेंसीज मिले और जितने लोग आईएस के अमीर के हाथ के ऊपर बैत करें इंटरनेशनली, उतना उसके मुखालिफ मुल्कों को ये महसूस होगा कि अगर हम आईएस को इराक में मिलिटरली शिकस्त दे भी दें तो उससे उनका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनली फ्रेंचाइज बना चुके हैं. जहाँ तक आईएस और अलकायदा का ताल्लुक है, इन दोनों के ऑपरेशन में काफ़ी हद तक फ़र्क है. अलकायदा जो है एक आइडियोलॉजिकल बेस बनाता है, वो जमीन के ऊपर कब्जा नहीं करता, वो एक 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 खित्ते के ऊपर कब्जा नहीं करता,
वो नजरियाती बेस बनाता है अपनी.
जी,
नजरियाती बेस बनाता है अपनी.
बिल्कुल, अपनी वो नजरियाती बेस बनाता है और उस नजरियाती बेस के बाद वो लोगों को ये पैगाम भेजता है कि ये हमारा मकसद है, ये हमारा नजरिया है, इससे आप इंस्पायर होकर हमारी लीडरशिप के बगैर हमारे नजरिए के मुताबिक आप लोग अपने वो टारगेट्स चूज करें और उसको खुद.
अच्छा, अब हम एक आगे चलते हैं साथ थोड़ा सा. इसमें ईरान और न्यूक्लियर टॉक्स जो हो रही हैं, कैरी साहब ने कल भी न्यूज कॉन्फ्रेंस की थी फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर के साथ, क्या डेवलपमेंट है मंजर कुरैशी साहब? बहुत इख्तसार के साथ बताइए, हमें अगले मौजू की जानिब जाना है. मंजर कुरैशी साहब आप लाइन पर हैं?
जी, अगर हम न्यूक्लियर टॉक्स की तरफ देखते हैं तो इसके अंदर इस वक्त अभी तक काफी सर्टन लेवल तक जो ओबामा की गवर्नमेंट है, दे वांट के एज सून एज पॉसिबल कोई किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट हो जाए और जो कि ईरान को भी मंजूर हो. तो लेकिन जिस तरीके से उनकी ऑपोजिशन है विद इन द यूएस गवर्नमेंट और भी जो हैं जो सऊदीज हैं वो भी इसको अपोज कर रहे हैं, तो काफी एक टाइट रोप के ऊपर चलना पड़ रहा है ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन को. स्टिल वो अभी इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से एज सून एज पॉसिबल एग्रीमेंट कोई साइन हो पाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर काफी इनके लिए आसानी हो जाती है आईएस को भी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ईरान की सपोर्ट मिल जाएगी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में कि अनलेस की कोई ड्रामेटिक कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से सब कुछ उनको अपनी पॉलिसी रिवर्स करनी पड़े, इस वक्त दोनों साइड जो है ईरान की भी और यूएस गवर्नमेंट भी, दे वांट के कोई एग्रीमेंट साइन हो जाए, और जब दोनों पार्टीज ही रेडी हैं तो एज सून एज दे रीच सम मिडिल पॉइंट जहां पर कि दोनों को एक्सेप्टेबल हो, तो एक क्रूड लेवल का या सर्टन लेवल के ऊपर उनका शायद एग्रीमेंट हो पाए Within near future.
संगीर शाह साहब, मुजव्वजा एग्रीमेंट के लिए मुखालिफत भी बहुत है, खासतौर पर खुद मिडिल ईस्ट के अंदर से।
बुनियादी मुखालफत तो है ही मिडल ईस्ट के अंदर से, जो मसला बुनियादी मसला यह है कि सारे मिडल ईस्ट में तमाम मुल्कों में एक एक काफी हद तक शिया पॉपुलेशन पाई जाती है, और जितनी भी शिया पॉपुलेशन है उसकी लीडरशिप जो है वो ईरान से आ रही है। सारे मिडल ईस्ट के बादशाहों को ये खौफ लाहक है कि अगर कहीं ईरान ने अपने लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने की ताकत हासिल कर ली तो फिर उनको उन शिया पॉपुलेशन को और ज्यादा धड़ल्ले के साथ बैकिंग मिलेगी, और उसको और उनके साथ वो ईरान के साथ फिर वो ये मिडल ईस्ट की हुकूमतें कोई नहीं कर सकी, उनको उसको काउंटर नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा खौफ है जो कि इनके दिलों में बैठा हुआ है। अगर आप यमन में देखें, अभी यमन में जो कि एक शियों की एक हुकूमत आई है और जिसके खिलाफ अभी सब मुतहद होकर काम कर रहे हैं, तो ये भी एक और एंगल भी अक्सर लोग कहते हैं कि बनता हुआ नजर आ रहा है कि शायद सऊदी अरब जो है यमन में अलकायदा के साथ एसोसिएटेड ग्रुप्स की भी हिमायत करे, क्योंकि हिस्टोरिकली प्रेसिडेंट्स मौजूद रहे हैं अरब की इस किस्म के ग्रुपों की हिमायत करते करने की शियों के खिलाफ। तो इस सिचुएशन जो है काफी हद तक कॉम्प्लेक्स हो सकती है, और जहां तक अगर कहीं ये भी लोगों के जहन में है कि अगर कहीं ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गए तो फिर अगर कोई सीरिया की तरह की हुकूमत हो जिसके जिसको ईरान की बैकिंग हासिल हो, क्या आया उस हुकूमत के खिलाफ कोई कुछ कर सकेगा या नहीं कर कुछ कर सकेगा, क्योंकि ऐसी हालात में शायद फिर ईरान उनके साथ अपना कीमियाई सॉरी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सके या
ओपन क्वेश्चन
शेयर कर सके।
जी अच्छा, आखिरी सवाल बस यूक्रेन के बारे में है, मंदर साहब क्या देख रहे हैं यूक्रेन की सूरत हाल को, अब आप बहुत इख्तिसार के साथ प्लीज।
जी, यूक्रेन की जो सिचुएशन है इस वक्त वो काफी प्रिकेरियसली होती जा रही है, और जिस तरह के यूरोप के ये जो कंट्रीज हैं जर्मनी और फ्रांस, और ये दे ऑल वांट कि किसी तरीके से यहाँ पर पीस ही रहे और एग्रीमेंट जो है टेबल के ऊपर सेटल हो जाए, और रशिया की भी तकरीबन ऐसा ही लगता है कि पॉलिसी है कि रशिया बेसिकली उनकी उनका ये है पॉइंट ऑफ व्यू कि ये एंटी रशिया ना हो एंटिटी जो भी हो, और रशिया के जो इंटरेस्ट है उनका ख्याल रखा जाए अनलेस कि ऐसा हो पाए। लेकिन जब हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि काफी ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, और बर्तानिया भी उनके साथ है इस पॉइंट ऑफ व्यू में, तो काफी एक उन्होंने एक ऐसी पोजीशन ली है यूरोप ने फर्स्ट टाइम जो कि अमेरिकन और पॉलिसी से डेविएट कर रही है। दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी एक एंटिटी अलग से शो की है कि हम लोग भी हैं इस एरिया में, और हम अपनी मर्जी इस एरिया के अंदर जो हम जो भी अगर फैसला होगा तो उसमें यूरोप के मर्जी शामिल की जानी चाहिए, और नॉट ओनली दैट बल्कि दे वांट पीस। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑन द ग्राउंड अगर हम देखते हैं तो थोड़ी बहुत अगर स्क्रिमिशेज और जो प्रॉब्लम थे काफी हद तक पीस इस वक्त होल्ड कर रही है, अनलेस के अगेन उधर कोई ऐसा कोई ड्रामेटिक कोई इशू बन जाए कोई बहुत बड़ा
जो
पहले भी हुआ था कि राइट विंगर जो थे यूरोप से ट्रेवल करके गए थे यूक्रेन के अंदर और वहां पर लड़ाई झगड़ों के अंदर वो भी इन्वॉल्व पाए गए थे, तो ऐसा कोई ग्रुप आके वहां पर कोई पीस को ब्रेक कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बीच में एक बफर जोन अच्छा खासा बना रहे हैं, अगर ये एस्टेब्लिश कर पाए तो मेरे ख्याल में ये पीस होल्ड करेगी और फिर एक सेटलमेंट हो जाएगी यूक्रेन में।
संगीत शाह साहब, कितने परसेंट इम्कानात हैं पीसफुली इस मामले का सेटल होने के?
जी, जहाँ तक इस मसले को पीसफुल तो सेटल नहीं हो रहा क्योंकि अभी तो जंग हो रही है, तो पीसफुल सेटलमेंट की तो अभी अब दुनिया की कोई भी जंग हो वो खत्म नेगोशिएशंस के थ्रू ही हुई है, कम से कम 99% जंगें जो है वो नेगोशिएशंस के थ्रू ही खत्म हुई है। तो जहाँ तक कि जंग ने अगर कहीं खत्म होना है तो फिर नेगोशिएशंस के थ्रू ही खत्म होना है, तो ये तो मैं आपको कह दूंगा कि हिस्ट्री से 99% साबित है। मगर एक बात जो है कि रूस ये नहीं चाहता कि यूक्रेन के जो रूसी नजाद इलाके हैं वो रूस में शामिल हों, क्योंकि अगर एक दफा ये इलाके रूस में शामिल हो गए तो फिर रूस के पास वो ट्रंप कार्ड नहीं रहेगा जो कि वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है अपनी रूसी नजाद इलाकों को जो कि यूक्रेन में है उनको उभारे और यूक्रेन की हुकूमत के ऊपर प्रेशर करे। यही सूरत हाल लिथुआनिया के साथ है, यही सूरत हाल लेटविया के साथ है। इन सब मुल्कों में एक साइजेबल रूसी नजाद लोग रहते हैं और रूस बस ये चाहेगा कि ये इलाके उन मुल्कों के साथ रहें और जब भी रूस चाहे इन लोगों को उभारे और उन मुल्कों के ऊपर प्रेशर डाल सके। तो यहाँ पे ऊपर रूस की ये ख्वाहिश नहीं है कि वो इलाके रूस के साथ मिल जाए, हाँ उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इलाके उन मुल्कों में रहें, उनकी लॉयल्टी जो हो वहाँ पे मौजूद रूसियों की वो रूस के साथ रहे और जब भी रूस चाहे उन लोगों को
इस्तेमाल कर सके। बहुत शुक्रिया संगीन शाह साहब, मंदर कुरैशी साहब, आप दोनों साहबान का। आप चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। डॉक्टर तैयब महमूद साहब सिएटल यूनिवर्सिटी के हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
जैसा कि आप जानते हैं कि 50 बरस कबल 1965 में सेल्मा से मैनगुमरी तक 3 मार्च सेल्मा के वोट डालने के हक की तहरीक कैसा थे, जिसके नतीजे में आखिरकार उसी साल वोटिंग राइट्स एक्ट की राह हमवार हुई। इनमें से पहला मार्च 7 मार्च 1965 को हुआ। इस मार्च को बाद में ब्लडी संडे का नाम दिया गया क्योंकि मार्च करने वाले 600 के करीब लोगों पर उस वक्त पुलिस ने हमला किया जब वो एडमंड पिट्स पुलिस ब्रिज पर पहुंचे और उन्हें रियासत अल्बानिया के रियासत अलबामा के दारुल हुकूमत मैनगुमरी पहुंचने से रोका गया। इसमें बहुत से लोग जख्मी हुए, जिसके बाद 2 मार्च और हुए और ये मार्च अमेरिका में शहरी हकूक के लिए की जाने वाली जद्दोजहद के वास्ते संग मील की हैसियत रखते हैं। 50 साल मुकम्मल होने के ऊपर इस वाक़े के सदर ओबामा और 100 के करीब अरकान कांग्रेस सेल्मा गए जहां हजारों लोगों से खिताब करते हुए सदर ओबामा ने कहा,
President Reagan signed its renewal when he was in office. President George W. Bush signed its renewal when he was in
office. उनके अल्फाज हैं, सदर रोनल्ड रेगन ने वोटिंग राइट्स एक्ट के तरमीमी बिल पर तब दस्तखत किए जब वो अपने ऑफिस में मौजूद थे। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी अपने दौरे सदारत में इस पर दस्तखत किए। कांग्रेस के 100 अराकीन यहाँ इस वक्त सेल्मा में मौजूद हैं ताकि उन लोगों को खिराज अकीदत पेश कर सकें जो अपने हकूक के लिए मरने को भी तैयार थे। अगर हमने आज के दिन को एहतराम देना है तो इन 100 अराकीन को वापस वाशिंगटन जाने दीजिए और मजीद 400 को जमा कीजिए और मिलकर अहद करें कि हमने इस कानून की इस साल भी तजदीद करनी है।
डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि जो शहरी हकूक की तहरीक थी अमेरिका में उसमें इस वाक़े को किस कदर अहमियत हासिल है सेल्मा के ब्लडी संडे को?
बहुत कलीदी इसका रोल रहा। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि एक तरह से टर्निंग पॉइंट था जहां से एक नया बाब शुरू हुआ और वजह उसकी ये थी कि मुजालिम तो पहले भी ढाए जाते थे सियाफाम शहरियों पे, लेकिन ये टेलीविजन की ताकत ने इसमें एक इजाफा किया कि जब ये वाकया हुआ जो कि काफी ट्रेजिक था, जब ये पहला मार्च हुआ है 7 मार्च 1965 को और उस पुल को जब क्रॉस किया गया और जिस तरह बड़ी वैशियाना तरीके से उनसे उन अलबामा की पुलिस ने उन हमले किए, तो वो सारा कुछ लाइव टेलीविजन जो जब तब नई नई चीज थी पूरे मुल्क ने देखा, उसका बहुत दूर रस और फौरी और दूर रस नताइज मुरतब हुए। एक तो उसमें ये था कि पूरे मुल्क से लोग गए सेल्मा अगले मार्च में शामिल होने के लिए, जिसमें ये चीज नोट करनी चाहिए कि बहुत सफेद फाम लोग भी शामिल हुए, खास तौर पे तलबा, खास तौर पे मजहबी लीडर। तो एक तरह से जो आप समझिए कि जो राय आम्मा थी वो बदली, जिन्होंने जो शायद नहीं जानते थे या जानते थे लेकिन कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इस तरह की वैशियाना जो है जुल्म ढाया जा सकता है किसी के ऊपर। तो ये हमने देखा है तारीख में और जगहों पे भी होता है कि एक मसाइल चल रहे होते हैं लेकिन कोई ऐसा वाकया होता है कि वो लोगों को को झंझोड़ता है. तो उस हवाले से इसके एक तो जैसे मैंने कहा कि रयामा एकदम जो है बदली मुल्क के अंदर, कि ये शायद अब जो है पैमाना लबरेज हो गया है और कुछ करना पड़ेगा. और उसकी उसी की वजह से कांग्रेस में जहां पे वोटिंग राइट्स एक्ट कहा जाता है, क्योंकि एक जो बहुत नस्ली इम्तियाज का एक नतीजा ये था कि वोट डालने का जो हक है जो थ्योरी में तो हमेशा मौजूद था, लेकिन प्रैक्टिस में वो खास तौर पे साउथ की स्टेट्स के अंदर सियाफ आम लोगों के लिए उसको बहुत मुश्किल बना दिया गया था. साउथ उसके हथकंडे थे. तो कोशिश तो कई सालों से की जा रही थी, जब से सिविल राइट्स मूवमेंट का आगाज हुआ था, कि कांग्रेस में एक नया कानून पास किया जाए जिसके तहत सियाफ आम लोगों को भी उसी तरह अपना वोट डालने का हक हासिल हो जैसे हर जगह है. लेकिन कांग्रेस में भी कोई ज्यादा पेशरफ नहीं थी हो सक रही, कुछ तो इस वजह से कि साउथ की रियासतों की काफी नुमाइंदगी है, डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत थी, डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुत दूररस जड़ें साउथ में उस वक्त मौजूद थी. तो ये सलमा मार्च का जो मंजरनामा पूरे मुल्क ने देखा, तो उससे कांग्रेस पे भी ये प्रेशर बढ़ा कि भाई अब जो आप इतनी देर करती है, अब कोई और ज्यादा देर जो है बाकी बाशिंदे भी मुल्क के बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो मैं समझता हूँ कि सलमा का मार्च ना होता और उसके साथ वो बर्ताव ना किया जाता जो किया गया, तो मालूम नहीं कि और कितना अरसा लगता वोटिंग राइट एक्ट को पास होने में, जिसने जो कि वाकई मुल्क के अंदर एक तरह से टर्निंग पॉइंट रहा और उसके बाद उसके काफी नतायज मुरतब हुए. क्योंकि वोट जब डाला जाता है, जैसे सामईन को मालूम है, वो सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं होता, लोकल भी होती हैं चीजें, मुकामी भी होती हैं चीजें, स्टेट के लेवल भी होती हैं चीजें. तो उसने ये नहीं कह रहा मैं कि वोटिंग राइट एक्ट ने दुनिया के सारे मसाइल हल कर दिए, लेकिन जितनी कानून साजी हुई मुस्लिम इम्तियाज को खत्म करने के लिए 1960 की दिहाई में, मुरखीन का यही ख्याल है कि उसमें सबसे अहम जो थी वो वोटिंग राइट्स एक्ट था. और वोटिंग राइट एक्ट का पास होना काफी मुश्किल होता अगर ये
वाक्य ना होता. तो
वाक्य ना
अगर इस सूरत हाल का आप पूरा जायजा लें, यानी सलमा का वाक्य जिसके बाद फिर वो मार्च ऑन वॉशिंगटन सिविल राइट्स की जो तहरीक थी मार्टिन लूथर किंग ने चलाई थी, उस पूरे पस मंजर में अगर आप देखें तो आज जो सूरत हाल बन रही है, अभी हाल में भी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि एक स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये कहा गया है कि वहाँ नस्ली तासुब पाया जाता है. तो आज अमेरिका में जो सिविल राइट्स है उनकी सूरत हाल क्या है, क्या तजिया करेंगे आप उसका?
हेलो.
जी फरमाइए.
ये हमारा रास्ता जरा कट गया था. देखिए ये चीजें जो होती हैं वक्त के साथ चलती हैं. अब जिस तरह अंग्रेजी का मुहावरा है कि इज द ग्लास फुल या ग्लास एम्प्टी, तो एक तरह तो ये तरफ तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर मुआजना किया जाए कि चीजें कहाँ खड़ी थी 60 की दिहाई के शुरू होते हुए और आज 50 साल के बाद कहाँ खड़ी हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी इंसान कहने में हक बजाने हुआ होगा कि कई हवालों से काफी तरक्की हुई है, चाहे वो इक्तसादी मैदान में हो, सियासी मैदान में हो, समाजी मैदान में हो, सियासाम बाशिंदों को और दूसरी नस्ली अकलियतों को हकूक मिले हैं. जो अब यहाँ हमारे यहाँ से रहने वालों पे को ये मालूम होना चाहिए कि इमिग्रेशन का कानून भी 1965 में ही बदला गया और इमिग्रेशन के कानून जो भी पूरी तरह नस्ली इम्तियाज का शिकार था, उसमें से नस्ली इम्तियाज की चीजें निकाली गई. और यही वजह है कि 1965 के जो नस्ली کا جو نیا امیگریشن قانون نافذ ہوا اس کے تحت پاکستان سے اور دوسری جگہوں سے زیادہ لوگ یہاں آ سکے. تو یہ تو ہے گلاس ہاف فل والی بات. دوسری اب یہ رہی کہ ہر چیز کا موازنہ جو ہے وہ صرف ماضی سے ہی نہیں کیا جاتا, وہ اس سے بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کے حال میں باقی لوگ آپ کے جو وہ ان کی زندگیاں کیسے ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ابھی اور کل صدر اوباما نے بھی یہ کہا کہ جو سلما میں مارچ شروع ہوا تھا وہ بھی مارچ جاری ہے. ابھی آپ نے فرگسن میزوری کے بارے میں جو جسٹس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی ہے اس کا ذکر کیا, اور تو ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ حال صرف فرگسن میزوری کا نہیں ہے, وہ تو اتفاق ہے دوبارہ کے کیونکہ ایک واقعہ دوہرا واقعہ ہوا تو اس وجہ سے فرگسن کا نام جو ہے دنیا میں مشہور ہو گیا ہے. ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ واقعے جو ہے تقریباً روز کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں, اور اس میں اور جو کہ کیونکہ پولیس ایک طرح سے سمجھیے کہ ریاست کا سب سے ویزیبل اور موجود چہرہ شہریوں کے لیے ہوتا ہے, تو جب ہم کہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کسی جگہ کا کسی شہر کا کسی ریاست کا کسی ملک کا جو ہے امتیازی سلوک برت رہا ہے تو وہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہی تنقید نہیں ہوتی, وہ پورے پھر معاشرے کی تنقید ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو چاہے وہ اور یہی نظر ہم اقتصادی طرف لے کے جا سکتے ہیں کہ بھائی ان امپلائمنٹ کی جو سچویشن ہے, تعلیم کی جو سچویشن ہے, ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر کی جو سچویشن ہے, تو ابھی واقعی جو مارچ سلما میں شروع ہوا تھا وہ ابھی جاری ہے, ابھی کافی آگے جانا ہے. نہ صرف یہ بلکہ پچھلے چند سالوں میں کافی جو ہے سیٹ بیکس بھی ہوئے ہیں. اب ووٹنگ رائٹس ایکٹ کو ہی دیکھ لیجئے, ووٹنگ رائٹس پاس ہوا تو اس کو اس کی ایک میعاد نیم تھی, اور اس ہر جب میعاد ختم ہوتی تھی تو کانگریس دوبارہ اس کو اس کی تجدید کرتا تھا. اب یہ جو نئی کانگریس آئی ہے اس نے ووٹنگ رائٹس ایکٹ کی تجدید نہیں کی. اسی طرح کئی اور معاملوں میں جبکہ 60 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں باتیں آگے بڑھی تھیں, تب سے وہ جو مارچ تھا وہ ذرا سست ہو گیا ہے اگر رک نہیں گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ابھی موجود ہے, مسئلے کی نوعیت کچھ بدلی ہے لیکن ابھی کافی آگے جانا پڑے گا اقتصادی میدان میں بھی, سیاسی میدان میں بھی اور سماجی میدان میں بھی.
ڈاکٹر طیب محمود, بے انتہا شکریہ آپ کا, ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھا یہ امریکہ میں جو موومنٹ ہے شہری حقوق کی تحریک کے لیے, آپ نے بہت اچھا اظہار خیال کیا, بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے, اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو خواتین کی دو ایکٹیوسٹ موجود ہیں, پاکستان سے ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ, اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعیدہ حمید صاحبہ. ہم ان سے گفتگو کریں گے لیکن ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد بات آگے بڑھے گی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جب وہ خواتین کے حقوق کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ہندوستان, پاکستان, افریقہ کے ممالک, دوسرے پسماندہ ممالک کا تصور ذہن میں آتا ہے جہاں عورتوں کے حقوق آج بھی وہ نہیں ہیں جو مغربی دنیا میں پائے جاتے ہیں. ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے آج کے موقع کی نسبت سے. ڈاکٹر فوزیہ سعید, یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو قانون سازی ہوئی ہے خواتین کے حقوق کے لیے, ویسے تو ایک ایکٹیوسٹ آپ کس حد تک اس سے مطمئن ہیں اور اس پر عمل درآمد سے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ قانون بننا ہی بڑی بات ہوتی ہے, اس سے بہت حوصلہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہی امپلیمنٹیشن آ سکتی ہے. تو جو پچھلے جو دور تھا, پچھلے 5 سال جو تھے, اس میں قوانین بنے تھے خواتین کے لیے, اور وہ بہت عرصے کے بعد آئے تھے. ایوب خان صاحب نے 1961 میں جو فیملی لا آرڈیننس پاس کیا تھا وہ ایک جامع مثبت قانون تھا. اس کے بعد چھوٹے موٹے اٹمپٹس ہوئے لیکن وہ کوئی اتنے جامع نہیں تھے. تو ہم نے تو ایکچولی 50 سال کے بعد یہ بریک تھرو ہوتا دیکھا, اور اس کے بعد یہ جب حکومت آئی ہے تو उसने, क्योंकि डेवोल्यूशन हो चुकी हुई थी, तो अब सूबे जो है जिसको कहते हैं बॉल उनके कोर्ट में है, सूबे जो है वो अपना काम थोड़ा उन्होंने उसमें कुछ जान आई है। जो बड़े कवानीन है जिनका मैं जिक्र करना बहुत जरूरी समझती हूँ, जो हमारी नजर में बहुत बड़े ब्रेक थ्रू है, जो हमारा घरेलू तशद्दुद का कानून था वो फंसा हुआ था बहुत सालों से, तो वो सिंध हुकूमत ने पहली ट्राई की, पहला कदम कह लें बहुत ही मुस्बत उठाया कि वो अभी तक एक ही सूबे में पास हुआ, बाकी सूबों की तरफ हमारी निगाहें उठी हुई है उम्मीद से, और फेडरेशन ने भी अभी तक पास नहीं किया। दूसरा जो था वो बचपन की शादी को काउंटर करने के लिए शादी की उम्र जो है वो 18 साल तक बनाने का एक कानून था, वो भी पहले सिंध गवर्नमेंट ने पास किया है। और मैं बहुत खुशी से आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि अभी दो दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट ने वही उसी तरह का बिल एक पास किया है, जिसमें मैं समझती हूँ कि जो पंजाब का वुमेन्स कॉकस है, जो वहाँ की प्रोविंशियल असेंबली की खवातीन का कॉकस है, उसका भी बड़ा हाथ है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा आपको मैं बता नहीं सकती कितना रेजिस्टेंस था। तो लोग तो कहते थे कि 12 साल से अब 9 साल पे ले जाओ उम्र, कई जो हमारे कंजर्वेटिव फैक्शंस हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि बाकी सूबे भी इसको अपनाएंगे और कैपिटल में भी ये कानून आएगा। इस किस्म के बलूचिस्तान ने एक छोटा मोटा अटेम्प्ट किया है। अब मैं इम्प्लीमेंटेशन का कहूँ तो उसमें से जो जिनसे हरासियत के लॉ बने उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिस्टमेटिक जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, शायद इस वजह से कि उसमें हुकूमत और सिविल सोसाइटी का टीम प्ले बहुत अच्छा है। बाकी कुछ जो अच्छे कानून थे उनमें से कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ की बिल्कुल नहीं है। जैसे वो एंटी वुमेन प्रैक्टिस था, उसमें ये बदले सुलह में औरत को देना, कुरान से शादी ना करना, इनहेरिटेंस ना देना, उसको बैन किया गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। तो मिक्स रिजल्ट आप कहें, मगर पूरी उम्मीद।
अच्छा डॉक्टर फौजी हमारे साथ रहिएगा, आप मुझे पता है कि आप डिनर में हैं, लेकिन थोड़ी देर हमारे साथ और रहिए। डॉक्टर सईदा हमीद साहबा, ये फरमाइए कि हिंदुस्तान में ये जो वाकयात हुए हैं ख्वातीन के खिलाफ जरायम के, उसके बाद कवानीन को खास सख्त किया गया है और हुकूमत ने बहुत सख्ती की, आपकी हद तक मुतमईन है जो स्टेटस ऑफ वीमेन राइट्स है हिंदुस्तान में?
बहुत लंबा रास्ता तय करना है अभी, मगर जैसे फौजिया ने कहा पाकिस्तान के बारे में, कुछ हद तक हम लोगों ने कुछ आगे बढ़े हैं और ख्वातीन के हुकूक लॉज में एनश्राइन हो गए हैं। जैसे कि हमारे प्रिवेंशन ऑफ डाउरी तो बहुत ही पुराना है, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप लॉज, PCPNDT, सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो जो हम लोगों के ममालिक में और बाकी और भी दुनिया में, नॉट ओनली इन साउथ एशिया, द इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी इज वेरी लैक्स, बहुत आहिस्ता रवि से चलता है इम्प्लीमेंटेशन का पूरा अमला। और दूसरी बात ये है कि खवातीन की जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखी गई है, जो 16 दिसंबर 2012 को जो रेप केस हुआ, जिसके बारे में आजकल इतनी बात चल रही है, जब से कि वो इंडियाज डॉटर डॉक्यूमेंट्री हैज हिट द हाई न्यूज लाइन, उसके बाद विमेंस मूवमेंट ने जो काम किया है उससे पूरी, समझिए पूरी दुनिया और पूरा साउथ एशिया और पूरे इंडिया में उसका बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुआ है। मगर ये इतनी बड़ी चर्निंग है कि वो अब भी हो रही है और अब भी उसके बारे में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, निर्भया के केस के कंक्लूजन में अभी फिर जो लॉ है उसमें लैक्सिटी है, इतनी तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अपना काम नहीं कर रहे, उसकी वजह से हमारे केसेस जो हैं, इट्स मैं जिसे कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो हम लोग उसका, उस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल और करनी है। एंड अक्रॉस द बोर्ड सेंसिटाइजेशन की जो इतनी जरूरत है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पेट्रियार्की जो है वो पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन साउथ एशिया, मगर साउथ एशिया में पूरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान में पेट्रियार्की बहुत बड़ा मसला है, उससे हमें, हमको अपने लेवल पे उससे जूझना है। ये कहना कि और मुल्कों में भी है उससे कोई खास फायदा नहीं होता, मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसका पूरा जो ये सिर्फ सिंगल आउट नहीं करना चाहिए एक खित्ते को कि वहाँ ये मसला ज्यादा है। अब क्योंकि रिपोर्टिंग ज्यादा है, इसको बहुत बोल्डली लड़कियां लड़कियों ने अपने सदियों के साइलेंस को तोड़ा है, इसलिए ये बात जो है ये लोगों के सामने आ गई।
अच्छा, एक बात, ये एक सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर सईदा हमीद साहिबा कि क्या मीडिया का जो रोल है इस सिलसिले में, उससे आप लोग खवातीन किस हद तक मुतमईन हैं?
देखिए, ये जो आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इसमें कोई, मैं इसका एक बहुत रवानी से और कोई बहुत क्लिप जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मीडिया ने इस इशू को बहुत उठाया है और अगर मीडिया इस इशू को लेके ना आता तो अब इस वक्त जो हमारे यहाँ जो इस वक्त वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस, मैं तो खैर अपने ही अपने मुल्क की बात करूंगी, वो इतने हेडलाइंस हिट ना करते, चाहे वो मुल्क के किसी कोने में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं साउथ के किसी छोटे से हैमलेट में हो, चाहे वो गुजरात के किसी ढाणी में हो, राजस्थान के किसी सहरा में हो, वो बात अब मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मीडिया ने ख्वातीन को जिस तरह से कमोडिफाई किया है वो दूसरा एस्पेक्ट है, और उसमें मीडिया में सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द मीडिया, सोशल मीडिया जो विच इज नाउ जो आपके सबके रीच में है, सब उसको तक पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया विद अ क्लिक ऑफ अ माउस, तो उससे हम लोगों के औरतों को जो कमोडिफाई करके उनको एक तरह से मैं उसका एक्सप्रेस करना मेरे लिए मुश्किल है, मगर मैं अपने अगर बॉलीवुड देखूं और मैं देखूं कि किस तरह से औरतों को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो मीडिया का जो एस्पेक्ट है, जो हमारे गाने हैं, जो हमारे लिरिक्स हैं, जो हमारे आइटम नंबर्स हैं, उससे भी लगता है कि दैट इज वो मीडिया का वो एस्पेक्ट भी है। क्योंकि अगर हम कोई कमोडिटी को बेचना चाहें, किसी भी, आप कोई भी टीवी चैनल, किसी भी इस खत्ते का कोई भी टीवी चैनल देखे, तो उसमें अगर औरत को किसी तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो मार्केट में बिकना उसका ज्यादा पॉसिबिलिटी है।
डॉक्टर फौजिया, ये बताइए कि ये जो इस किस्म के इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं, जैसे ख्वातीन का बैन अक्वामी दिन मनाया जा रहा है, क्या इसके कोई रियल मीनिंग्स होते हैं, इससे कोई फायदा होता है आपके मूवमेंट को?
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा मीडिया की बात कर लूं।
जी,
अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि मीडिया ने पाकिस्तान में भी इन इश्यूज को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है, मगर मैं ये कहूंगी जो कसर रह गई वो दो चीजों में, एक तो ये कि केसेस का फॉलो अप इतना नहीं हो पाता, जैसे एक दफा केस हो गया मगर फिर उसके बाद वो एक्विटल हुआ, क्या हुआ, उसकी कहानी इतनी नहीं सुनाई जाती, और दूसरा ये कि थोड़ा सा डिसेंसिटाइज भी किया है, क्योंकि हमारे ड्रामों ने आजकल वायलेंस बहुत ज्यादा उठाया हुआ है और औरतों के खिलाफ तशद्दुद जो है वो बहुत थप्पड़ वप्पड़ तो हर ड्रामे में एक दो लगा ही देते हैं वो, और इसको थोड़ा सा ना चूरन की तरह, मिर्च मसाले की तरह भी थोड़ा यूज करते हैं, एक तो वो नुकसान हो रहा है, और दूसरा जो तंजीमें हैं, औरतों की तंजीमें या औरतों के हकूक पे काम करने वाली खवातीन, उसका एक ना तमस्कुर बनाकर एक स्टीरियो टाइप का बनाते, वो भी अच्छी बात नहीं है जो मीडिया कर रहा है। एनजीओज का नाम हो जाए, चाहे वुमन राइट एक्टिविस्ट का लड़ाका पानी, इस किस्म की चीजों को उठाते हैं, दैट इज नॉट गुड। अच्छा, अब आपके वाले सवाल पे मैं आती हूँ कि 8 मार्च जो है, मेरा ख्याल है तब तक ये कमेमोरेटिव डे है, मैं अक्सर अपने साथियों को भी कहती हूँ कि ये हॉलमार्क वाला डे नहीं है जिससे हर वक्त लोग कहें हैप्पी वुमेंस डे, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे की तरह, ये एक इंसानी हकूक के तहत दिन है और इसको कमेमोरेट किया जाता है, जो पहले भी बातें हुई, और हर मुल्क अपनी थीम रखता है, तो ये बहुत ही इशू बेस्ड चीज है, मेरे ख्याल है बहुत जरूरी है, इस बहाने मैं तो आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ मैंने फोक गाने भी सुने हैं लोकगीत, जिसमें 8 मार्च का जिक्र आता है कि औरतों का ये प्राइड सी है कि भाई ये हमारा दिन है। तो मैं समझती हूँ इसका इसका फायदा ही है, इसका नुकसान कभी नहीं।
अच्छा, एक आखिरी सवाल डॉक्टर सईदा हमीद साहब आपसे पहले मैं करूँगा कि क्या मतलब इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है या ये हो रहा है कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खवातीन की तंजीमें वो मिलकर अपने हकूक के लिए बात करें या मिलकर जद्दोजहद करें, ऐसा कोई इंतजाम है?
औरतों की तंजीमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आज से नहीं, आज से 35 साल पहले से प्लेटफॉर्म जोड़ जोड़ के बातें करनी है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ जबकि एक 1 बिलियन राइजिंग जो कि बैनुल अक्वामी तौर से एक बिलियन लोग उठे ये कहने के लिए कि नो मोर साइलेंस अबाउट वायलेंस, औरतों पे तशद्दुद अब गवारा नहीं। इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की खवातीन ने इसको मिलके लाहौर में मनाया और वहाँ न सिर्फ लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह से खवातीन और खवातीन के साथ शाना बशाना मर्द यहाँ वो खड़े हुए, हिंदुस्तान से एक वक्त गया। तो ये जो और ये न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान मगर ये जो एक 1 बिलियन राइजिंग है ये नेपाल में मनाया गया, बांग्लादेश में मनाया गया, अफगानिस्तान में मनाया गया, श्रीलंका में मनाया गया। तो जहाँ तक खवातीन की तंजीमों का सवाल है, इस उनकी एक साउथ एशियन आइडेंटिटी है जो कि शायद बहुत लोग जानते नहीं है क्योंकि शायद उसको इतना प्रोजेक्ट नहीं किया गया, मगर मैं 35 साल से इसमें ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है और जो मेरे साथ हिंदुस्तान में खवातीन एक्टिविस्ट हैं उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है कि कोई ऐसा दिन नहीं मनाते हम जो खवातीन से के ताल्लुक से कि जिसमें हम साउथ एशियन लेवल पे औरतों को इसमें सबको इंक्लूड ना करें।
डॉक्टर फौजिया सईद, आखिरी बात, क्या आप समझती हैं कि इस किस्म की कोई एक तंजीम होनी चाहिए बाकायदा मजबूत तौर पर
साउथ एशिया में? ये असल में डिफरेंट जो मुख्तलिफ थीम्स हैं उनके हिसाब से हमारे मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, जैसे जेंडर ट्रेनिंग के हिसाब से एक नेटवर्क है, तशद्दुद के हिसाब से एक है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, जो हमारा सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर लेजिस्लेशन बना उसमें फिर अफगानिस्तान से हम बहुत जुड़े, उन्होंने हमारी बहुत सारे मटेरियल्स दिए, मैं जैसे आती जाती रही, फिर मालदीव्स का लॉ बना हमारे पास, हिंदुस्तान का उसका अफगानिस्तान का बना, फिर मालदीव्स का बना और इंडिया का बना। तो एक एक जुड़त सी रही कि भाई वहाँ क्या वर्डिंग यूज हुई, वहाँ क्या हुई। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वुमेन्स इश्यूज के ऊपर एक नेटवर्क की जरूरत शायद नहीं है, लेकिन जो थीमेटिक है ना, जैसे जो एंटरप्रेन्योर खवातीन ने जो बिजनेस स्किल्स वगैरह कर रहे हैं उनके अपने नेटवर्क्स होते हैं, तशद्दुद के अपने नेट, तो वो उस तरह से रहे तो ज्यादा बेहतर है।
मतलब कोऑपरेशन रहे ग्रुपों के दरमियान।
जी बहुत है, औरतें काफी ऑर्गेनाइज हैं। अगर आप सिविल सोसाइटी में देखें तो बाकी सेक्टर से मैं समझती हूँ कि जो वुमेन्स इश्यूज के ऊपर लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज।
वैसे अगर औरतें ऑर्गेनाइज ना हो तो घर भी ना चल सके, वो औरतों ही की ऑर्गेनाइजेशन होती है कि घर चलते हैं।
अब हमने मुल्क भी चलाने हैं तब आपको दिखाएंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईदा हमीद साहिबा, डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा, आप दोनों खवातीन का। अब हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानब। हमारे साथ इस वक्त तो टेलीफोन लाइन पर प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब।
जी वालेकुम सलाम।
हम गुफ्तगू करेंगे सबसे पहले इलेक्शन जो हुए हैं सेनेट के, उसके हवाले से एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट है जो सुन लेते हैं, जिसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं।
5 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात के गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 27 जबकि हुकुमरान मुस्लिम लीग नून की 26 नशिस्तें हैं और ये दोनों जमातें दीगर पार्टियों की हिमायत हासिल करने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدوں کے لیے کسی مفاہمت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. ان انتخابات کا ایک بڑا مرحلہ تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے چار ارکان کا انتخاب الیکشن سے محض چند گھنٹے قبل صدارتی آرڈیننس جاری ہونے کے باعث ابہام کا شکار ہو گیا اور اسے ملتوی کر دیا گیا. صدر ممنون حسین نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس کے تحت ماضی کے برعکس فاٹا سے ارکان قومی اسمبلی کو چار کی بجائے ایک ہی ووٹ ڈالنے کا اختیار حاصل ہوگا. فاٹا کے ارکان اور مختلف سیاسی جماعتوں نے اس آرڈیننس کو نامناسب قرار دیا، جبکہ حکومتی ارکان یہ کہہ کر اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ سب کو ووٹ کا یکساں حق حاصل ہونا چاہیے. فاٹا کے چند ارکان قومی اسمبلی نے اس آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تاحال چار نشستوں کے انتخاب بارے کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا.
یہ بتائیے پروفیسر سجاد نصیر صاحب کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ سے صدر صاحب ہیں، پنجاب سے وزیر اعظم صاحب ہیں، تو جو دو چھوٹے صوبے ہیں بلوچستان اور کے پی، ان کو نمائندگی نہیں ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اس مرحلے کے اوپر سینٹ میں ان صوبوں کو نمائندگی دی جائے؟
دیکھیں جی، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تو نہایت ہی مناسب اور ضروری بات ہے، لیکن یہ سارا جو ہو رہا ہے پچھلے چند ہفتوں سے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں الیکٹورل پالیٹکس کی کلچر جو ہے، اچھا وہ کیا ہے، اس کے شاخسانے بہت پیچھے تک جاتے ہیں اور وہی پریکٹسز جو ہیں وہ اب کنٹینیو کیے جا رہی ہیں. اور شور و غوغا جو تھا وہ یہ تھا کہ سیٹیں جو ہیں 4 کروڑ کا ووٹ ہے، کچھ 1 کروڑ کا ووٹ ہے، اور فاٹا کے جو ممبران ہیں ان کے بارے میں بالخصوص یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے ریٹ بہت ہائی ہیں. تو ایک طرف ریگنگ کا مسئلہ چل رہا ہے، دوسری طرف سے پھر یہ ساری گفتگو جو ٹی وی پہ بھی دیکھی جا رہی ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا فوکس جو ہے وہ صرف سینٹ الیکشنز پہ کیوں ہے. آفٹر آل سینٹ ایک نارمل پروسیجر ہے، اس کے تحت الیکشنز ہو جانے چاہیے اور اس کے بعد جس کی اکثریت ہوگی وہ اپنا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بنا لے گا. لیکن چونکہ سینٹ میں صورتحال اس قسم کی ہے کہ پیپلز پارٹی کی پھر بھی 27 نشستیں ہیں اور حکمران پارٹی جو ہے اس کی 26 ہیں، اور اب مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم جو ہیں ان کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، اور کیا ڈیل ہو سکتی ہے، کیا وہ ان کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں، اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اٹ از این اوپن کوشچن. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر الیکشنز کراتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم فری اور فیئر الیکشنز کرائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ طور طریقے جو پریکٹسز ہیں وہ ساری وہی ہیں جو کہ مینیپولیشن کی ہیں، پیسے کی دوڑ کی ہیں، اور وہ آپ سارا کچھ چلا رہے ہیں. اوپر سے آپ کا پریزیڈینشیل آرڈیننس آ گیا ہے جس کی وجہ سے فاٹا والے جو تھے، جس کی وجہ سے کرپشن کا داغ، بڑا بدنما داغ جو تھا وہ سامنے آ رہا تھا، تو اس کو آپ نے ٹیمپریریلی کم ہٹا دیا ہے راستے سے تاکہ کرپشن کا جو ایک شور مچا ہوا ہے اچھا وہ کچھ دب جائے. تو میرا کہنے کا گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک وہ کلچر جو ہے جو کہ فری اور فیئر الیکشن کی اور آنیسٹ الیکشن کی ہے، اور وہ نارمز اور پریکٹسز جو ہیں وہ ابھی ایوالو نہیں کر رہی ہیں، اور ہم اسی طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس پورے واقعے کو
ایک منٹ مجھے دیجیے. لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پچھلے 5 سال گزرے ہیں اور آج کے 1.5 سال گزر گیا ہے، جو طور طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کی اور نواز لیگ کی، اور یہ آپس میں فیصلہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ ایک دوسری پارٹیاں جو ہیں چھوٹی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ بنیادی طور پہ انہی دونوں جماعتوں کی ہے اور یہ اسی طریقے سے کام چلائیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر جو ہے وہ پنجاب کا ہے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ سندھ کا ہے، تو اب چیئرمین جو ہے وہ آپ بلوچستان سے لائیں گے، کے پی کے سے لائیں گے، تو یہ اصل میں ایشو ہے. اور اس پہ بھی میرے خیال میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کو ضرور ہے، اور یہ سارا شور شرابہ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے.
اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر پورے صورتحال کو ہم ایک دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھیں، فاٹا کے جو ارکان ہیں ان کو ووٹ دینے کے حق سے فی الحال محروم کیا گیا ہے، وہ نہیں دے سکتے، ایک ووٹ دیں گے، کورٹ میں کیس ہے، تو فاٹا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے آئسولیشن میں ہے, وہ مین اسٹریم میں آنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں ہے ابھی تک مین اسٹریم میں, تو کیا یہ اقدام ان کو فردر آئسولیشن میں نہیں لے جائے گا مین اسٹریم سے؟
بالکل یہ کرے گا, ڈسکریج کرے گا ان میں, اور وہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ زیادہ ابھر کے سامنے آئے گا کہ ہم مین اسٹریم پالیٹکس کی پاکستان میں نہیں ہیں. اور یہ جو سمبولک ریپرزینٹیشن تھی, اچھا اس کو بھی اگر آپ نے فارغ کر دیا تو وہ ایلینیشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور آگے ہی معاملے وہاں کے ٹھیک نہیں ہیں تو اس سے اور مزید خرابی جو ہے پیدا ہونے کے امکانات ہیں.
اور یہ جو آرڈیننس آیا تھا صدر صاحب کی طرف سے, اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل بیکنگ ہے؟
اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ چیلنج ہو گیا ہے, اور میرا اپنا جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو اس موقع پہ آرڈیننس جاری نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جو مروجہ رولز تھے الیکشن کمیشن کے اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے انہی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا اور الیکشن کروانے چاہیے تھے, اور ان کے جو چار ووٹ ہیں, اچھا چار جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا الیکشن ہونا چاہیے تھا. یہ ایک بہت ہی منفی کام کیا گیا ہے اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے.
اچھا روایتی طور پر اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ اب جبکہ وزارت عظمیٰ اور صدارت کے اوپر دو صوبوں سے لوگ موجود ہیں,
جی,
تو بقیہ دو صوبوں کو بھی چانس ملنا چاہیے سینٹ میں؟
جی, عام طور پہ جو فیڈرل سسٹمز ہوتے ہیں اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہو, اور تاکہ ان میں ایلینیشن جو ہے اس کا جو ہے رجحان جو ہے وہ کم ہو. تو عام طور پہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اب جو سینٹ کا چیئرمین ہے یا وہ بلوچستان سے ہو, اور چلو ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ آپ پنجاب سے کر لیں, جو کہ یہ کریں گے میرا اپنا خیال ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا یہ بلوچستان سے لیتے ہیں یا کے پی کے سے لیتے ہیں, یہ اب ابھی تک پتہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے, لیکن ابھی آئندہ دنوں میں پتہ لگ جائے گا, دو چار دنوں میں, کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اس صورت میں. لیکن فیڈریشن کو اگر تقویت دینی ہے تو پھر فیڈریٹنگ یونٹس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے.
اچھا آپ اس سے ہٹ کر ذرا ایک اور ٹاپک کے اوپر, آج جو وزیر خارجہ ہیں, مشیر خارجہ امور کے سرتاج عزیز صاحب وزیر اعظم کے, انہوں نے ایک بیان دیا ہے, ایک میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی, اور انہوں نے انڈیا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے بعد اب وہ پاکستانی چاہتا ہے کہ تمام ایشوز پر بشمول کشمیر اور پانی کے مسئلے کے گفتگو ہونی چاہیے. یہ بار بار کی جو وضاحت آ رہی ہے,
جی,
اس کا کیا سبب ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پس منظر میں کوئی خاص بات ہے, کوئی واقعہ ہے, کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟
دیکھیں جی, جہاں تک فورن سیکرٹری صاحب کی وزٹ تھی 4 مارچ کی, وہ انڈین پوزیشن تو انہوں نے کلیریفائی کر دی خود ہی کہ جی ہم تو سارک کے کانٹیکسٹ میں یہ ساؤتھ ایشیا یاترا کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی اسپیسیفک ایجنڈا جو ہے وہ نہیں ہے. پاکستان یہ باتیں دہرا رہا ہے, اس کا اعادہ کر رہا ہے بار بار, لیکن انڈین رسپانس کوئی نہیں آ رہی اس پہ کسی قسم کی ابھی تک, اور نہ ہندوستان جو ہے وہ کسی قسم کی فلیکسیبلٹی جو ہے اس ایشو پہ دکھانے کے لیے تیار ہے کہ ہم دوسرے جو ایشوز ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور یہ چونکہ پاکستان حکومت اور پاکستان کی جو افیشل پوسچرنگ ہے اس کانٹیکسٹ میں, اچھا وہ تو یہی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ ریزیوم کرنا چاہتے ہیں, نارملائز کرنا چاہتے ہیں, لیکن انڈین جو ہے وہ فلیکسیبلٹی نہیں آ رہی ہے, جس کی وجہ سے ایک پاکستان میں ریئیکشن جو ہے اور ریئیکٹو سینٹیمنٹ جو ہے, اچھا وہ پیدا ہونا شروع ہو رہا ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہندوستان کو اس معاملے میں تھوڑا سا کوشس رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ کس لیول پہ کم از کم ڈائلاگ جو ہے اس کو ضرور ریزیوم کیا جائے, جس سے کہ معاملات بات چیت کے ساتھ کچھ آگے بڑھنے کا موقع مل سکے. لیکن ہندوستان ابھی تک اس قسم کی کوئی انڈیکیشن جو ہے وہ نہیں دے رہا ہے, جس کا کہ ایک رد عمل جو ہے وہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہوگا. اور ایک طریقے سے جو آرمی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا سینٹرک پالیسی ہے سیکیورٹی اور ڈیفنس کے حوالے سے, اس کو زیادہ تقویت ملے گی.
جی, بہت شکریہ پروفیسر سجاد نصیر صاحب, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھی نیلوفر مغل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.